आज हम गैब्रियल ज़ीविन के एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने पिछले कुछ सालों में साहित्य जगत में तहलका मचा दिया है।
नाम है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो।
हाँ, और ये कहानी दोस्ती, क्रिएटिविटी और प्यार की उन बाउंड्रीज को तोड़ती है जिन्हें हम आमतौर पर जानते हैं।
बिल्कुल, ज़ीविन की खासियत ही यही है कि वो इंसानी रिश्तों की जो उलझी हुई गांठें होती है ना, उन्हें बहुत प्यार से खोलती हैं।
और इस किताब के साथ उन्होंने जो सबसे असाधारण काम किया है वो है वीडियो गेम्स को वो सम्मान देना जो अब तक शायद सिर्फ साहित्य या सिनेमा को ही मिलता था।
सही कहा, ये सिर्फ गेमर्स की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर वर्चुअल दुनिया बनाते हैं। ये दिखाती है कि एक गेम बनाना किसी महान कला को बनाने से कम नहीं है।
तो आज के हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा। हम कहानी के तीन मुख्य किरदारों सैम मसूर, सैडी ग्रीन और मार्क्स वतनबे, इनके सफर को करीब से देखेंगे और उस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्या दो लोगों का मिलकर कुछ बनाना, मतलब एक साथ एक सपने को जीना, किसी भी रोमांटिक रिश्ते से ज्यादा गहरा और मजबूत हो सकता है।
तो चलिए शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, एक अस्पताल के गेम रूम से।
बिल्कुल, कहानी 1980 के दशक के आखिर में शुरू होती है। सैम मसूर एक बच्चा है जो एक भयानक कार एक्सीडेंट से उभर रहा है।
एक ऐसा हादसा जिसने उसे उसकी माँ को छीन लिया और उसका एक पैर
हमेशा के लिए बर्बाद हो गया है। वो अस्पताल में अकेला है, दर्द में है, और वहीं सैंडी ग्रीन अपनी बहन से मिलने आती है जो कैंसर से जूझ रही है।
और ये दोनों अकेले बच्चे अस्पताल के एक प्लेरूम में मिलते हैं।
हाँ, और उन्हें जोड़ने वाली चीज बनती है एक वीडियो गेम,
सुपर मारियो ब्रदर्स।
जी,
मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि उनके रिश्ते की शुरुआत ही दर्द और उससे भागने की कोशिश से होती है।
हाँ,
खासकर सैम के लिए वीडियो गेम सिर्फ एक स्क्रीन पर पिक्सल नहीं है, वो एक ऐसी दुनिया है जहां उसका टूटा हुआ शरीर कोई मायने नहीं रखता।
बिल्कुल, वहां वो दौड़ सकता है, कूद सकता है,
वो पूरा महसूस करता है।
सही का, वो गेमिंग कंसोल उनकी दोस्ती की जमीन बन जाता है। महीनों तक वो साथ खेलते हैं, एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये मासूम दोस्ती एक बहुत कड़वी गलतफहमी से टूट जाती है
जब सैंडी सैम को बिना बताए उनके साथ बिताए गेमिंग के घंटों को अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट, एक कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट के तौर पर लिख देती है।
और जब सैम को यह पता चलता है तो उसे लगता है जैसे उसका इस्तेमाल किया गया हो।
जैसे वो सैंडी के लिए सिर्फ एक चैरिटी केस था।
हाँ, और ये धोखा उसे इतना तोड़ता है कि वो अपनी दुनिया में सिमट जाता है। बचपन का ये जख्म उनके रिश्ते पर एक परछाई की तरह हमेशा के लिए रह जाता है
और सालों तक उनके बीच कोई संपर्क नहीं रहता।
हाँ, कई साल बीत जाते हैं। कहानी 1990 के दशक के बीच में पहुंचती है। सैम हार्वर्ड में है और सैंडी MIT में।
और फिर एक दिन किस्मत उन्हें बॉस्टन के एक बर्फीले सबवे स्टेशन पर फिर से आमने सामने ले आती है।
मुलाकात थोड़ी अजीब है, वो पुरानी कड़वाहट अभी भी है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है गेम्स के लिए उनका जुनून।
और यहीं से उनकी रचनात्मक यात्रा का दूसरा अध्याय शुरू होता है ना?
हाँ, जब सैम के हाथ सैंडी का बनाया हुआ एक गेम लगता है और वो हैरान रह जाता है
और वो सैंडी को मना लेता है कि उन्हें मिलकर कुछ बनाना चाहिए।
हाँ, सैम को सैंडी का बनाया हुआ एक गेम इंजन मिलता है। अब इसे ऐसे समझिए कि इंजन वो बुनियाद है जिस पर पूरा गेम खड़ा होता है।
मतलब गेम के नियम क्या होंगे, उसकी दुनिया कैसे काम करेगी,
किरदार कैसे चलेंगे, ये सब इंजन तय करता है। सैम ये देखकर दंग रह जाता है कि सैंडी ने अकेले ही इतनी जटिल और खूबसूरत चीज बना ली है
और वो उसे एक पूरा गेम बनाने के लिए मना लेता है। एक बर्फीली सर्दियों की छुट्टी में वो दोनों दिन रात एक करके इचिगो नाम का एक गेम बनाते हैं।
और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाती है। हम हमेशा प्यार को एक रोमांटिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन क्या दो लोगों का मिलकर कुछ बनाना, एक गेम, एक कंपनी, एक पूरी दुनिया,
क्या वो उससे भी ज्यादा गहरा रिश्ता हो सकता है?
हाँ, इचिगो नाम भी कितना कमाल का है। जापानी में इसके दो मतलब हैं, स्ट्रॉबेरी जो मासूमियत का प्रतीक है
और दूसरा एक जीवन काल, वन लाइफ टाइम वन चांस।
बिल्कुल, ये नाम उनके उस पल की और उनके रिश्ते की अनोखी शुरुआत को दिखाता है
और यही इस उपन्यास की आत्मा है। ये रिश्ता जुनून और समर्पण पर बना है, लेकिन वो जुनून एक दूसरे के लिए नहीं है।
नहीं, वो उस चीज के लिए है जो वो साथ मिलकर बना रहे हैं। ये एक अलग ही तरह का प्यार है
जिसमें जलन भी है, मुकाबला भी है
और एक दूसरे के बिना अधूरे होने का एहसास भी। इचिगो एक इंडी हिट बन जाता है, उसे बड़ी कंपनियों का सहारा नहीं मिलता, फिर भी वो बहुत कामयाब होता है
और इस कामयाबी को संभालने और अपने भविष्य पर कंट्रोल रखने के लिए वो एक कंपनी बनाते हैं अनफेयर गेम्स,
और इस सफर में उनका साथ देता है सैम का रूममेट मार्क्स वतनाबे।
मार्क्स वो इस तिकड़ी का दिल है।
एकदम, वो अमीर है, करिश्माई है, और सैम और सैंडी दोनों पर भरोसा करता है। वो सिर्फ पैसा नहीं लगाता, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनता है
और इन दो जीनियस लेकिन मुश्किल किरदारों के बीच एक पुल का काम करता है।
हाँ, वो सैम और सैंडी के रिश्ते के तनाव को जैसे सोख लेता है।
लेकिन कामयाबी के साथ मुश्किलें भी आती हैं, है ना, खासकर सैंडी के लिए।
हाँ, वो अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर डोव मिज़रा के साथ एक रिश्ते में पड़ जाती है, जो खुद एक बहुत बड़ा गेम डिजाइनर है,
और वो रिश्ता बहुत ही मतलब अपमानजनक और टॉक्सिक साबित होता है।
बिल्कुल, डोव टैलेंटेड है लेकिन वो सैडी को मानसिक तौर पर तोड़ देता है। वो उसके दिमाग में ये बात डाल देता है कि सैडी का टैलेंट उसका अपना नहीं है, बल्कि डोव की वजह से है।
इससे तो सैडी का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल जाता है।
हाँ, और इसी बीच कंपनी में भी एक अजीब सी डायनामिक्स बनने लगती है।
कंपनी का चेहरा सैम बन जाता है, मीडिया को उसकी कहानी ज्यादा दिलचस्प लगती है, एक विकलांग कोरियाई अमेरिकी लड़का जिसने इतनी बड़ी गेमिंग कंपनी बनाई।
यहाँ एक मिनट रुकते हैं, क्या ये सिर्फ उस दौर की गेमिंग इंडस्ट्री की दिक्कत थी जो पुरुषों की दबदबे वाली थी, या ये सैम और सैडी के रिश्ते की अपने अंदरूनी समस्या भी थी?
ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या सैम ने कभी सैडी के योगदान को जानबूझकर नजरअंदाज किया?
उपन्यास इसे दोनों तरह से दिखाता है। एक तरफ गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं को श्रेय न मिलने की समस्या तो थी।
अच्छा।
लेकिन दूसरी तरफ सैम भी अपनी असुरक्षाओं से घिरा था। वो अपनी विकलांगता की वजह से हमेशा खुद को कमजोर महसूस करता था,
और शायद ये शोहरत उसे उस कमजोरी से लड़ने का एक तरीका लगी।
हाँ, और इस चक्कर में वो ये देख ही नहीं पाया कि सैंडी को कितना अकेला और नजरअंदाज महसूस हो रहा है,
और ये सारा तनाव उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट मैपल वर्ल्ड के दौरान फट पड़ता है।
हाँ, मैपल वर्ल्ड, जो एक बहुत बड़ा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, और इसे बनाने के दौरान उनकी रचनात्मक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि वो पर्सनल हो जाते हैं।
वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, सिर्फ काम के जरिए एक दूसरे पर ताने कसते हैं।
लेखिका ने इस तनाव को दिखाने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाया है,
वो बोथ साइड्स वाला चैप्टर।
हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। उसमें एक ही लड़ाई को पहले सैम के नजरिए से और फिर सैंडी के नजरिए से दिखाया गया है,
और ये पढ़कर समझ आता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक दूसरे का दर्द समझ ही नहीं पा रहे हैं।
इससे पता चलता है कि उनके बीच बातचीत कितनी मतलब एकदम बंद हो चुकी थी।
इसी उथल पुथल के बीच एक अच्छी चीज होती है।
मार्क्स और सैंडी एक दूसरे के करीब आते हैं, पर उनके बीच एक प्रेम संबंध शुरू होता है।
मार्क्स का जो शांत स्वभाव है वो उन तीनों की जिंदगी में एक ठहराव लाता है।
हाँ, लेकिन उनकी कंपनी एक और मुश्किल में फंस जाती है जब वो अपने गेम मेपल वर्ल्ड में सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह का ऑप्शन डालते हैं, तो अमेरिका का एक कट्टरपंथी समूह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देता है।
और ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ ये सिर्फ किरदारों के आपसी रिश्तों से निकलकर समाज और राजनीति के बड़े मुद्दों को छूती है।
बिल्कुल, ये दिखाती है कि कला का समाज पर क्या असर होता है और समाज उस पर कैसे रिएक्ट करता है,
और ये विरोध एक भयानक मोड़ ले लेता है।
हाँ, एक दिन गुस्से से भरा एक बंदूकधारी उनके ऑफिस में घुसाता है। वो सैम और सैंडी को मारने के इरादे से आया होता है,
लेकिन जब वो एक और कर्मचारी पर बंदूक तानता है तो मार्क्स
उसे बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। मार्क्स की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है।
थोड़ी खामोशी।
ये इस कहानी का वो पल है जहाँ सब कुछ टूट जाता है।
सच में मार्क्स सिर्फ एक दोस्त या बिजनेस पार्टनर नहीं था, वो उन दोनों के रिश्ते का संतुलन था, वो गोंद था जो उन्हें जोड़े रखता था।
उसके बिना सैम और सैडी बस दो अलग अलग ध्रुव बनकर रह जाते हैं,
और वो सालों तक उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते।
मार्क्स की मौत का अपराध बोध उन्हें खा जाता है। सैडी को लगता है कि सैम के मशहूर होने की भूख की वजह से वो निशाना बने,
और सैम अपने दुख में इतना डूब जाता है कि वो किसी से बात नहीं कर पाता।
उनकी दोस्ती, उनकी पार्टनरशिप, सब कुछ उस दिन मार्क्स के साथ ही खत्म हो जाता है।
दुनिया जिसे उन्होंने इतनी मेहनत और प्यार से बनाया था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है।
कई साल गुजर जाते हैं। सैडी अनफेयर गेम्स छोड़कर एक कॉलेज में प्रोफेसर बन जाती है। वो छोटे आर्टिस्टिक गेम्स बनाती है,
और सैम कंपनी में ही रहता है। वो पाइनियर्स नाम का एक गेम बनाता है जो असल में मार्क्स के लिए एक खामोश श्रद्धांजलि है।
वो सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते,
और यहाँ लेखिका एक और अविश्वसनीय काम करती है। एक पूरा चैप्टर मार्क्स की मौत के बाद उसके नजरिए से लिखा गया है।
हाँ, जिसमें मार्क्स एक गेम में एक एनपीसी के रूप में मौजूद है। एनपीसी यानी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर,
वो किरदार जिन्हें हम गेम में देखते तो हैं पर पर जिन्हें कोई खिलाड़ी कंट्रोल नहीं करता।
वो बस उस दुनिया का हिस्सा होते हैं। मार्क्स भी अपनी मौत के बाद उसी तरह अपने दोस्तों की दुनिया का एक मूक हिस्सा बनकर रह जाता है, उन्हें दूर से देखता हुआ।
क्या कमाल की बात है, ये दिखाता है कि उसका प्यार और उसका असर उनकी जिंदगी से कभी गया ही नहीं।
आखिरकार सालों बाद एक लेक्चर के लिए सैम और सैडी को फिर से एक साथ मंच पर लाया जाता है
और वहाँ हजारों लोगों के सामने और बाद में अकेले में वो पहली बार ईमानदारी से बात करते हैं।
वो अपने दुख, अपनी गलतियों और एक दूसरे को दिए जख्मों को स्वीकार करते हैं
और उपन्यास का अंत उम्मीद की एक हल्की सी किरण के साथ होता है।
हाँ, वो साथ बैठकर एक नए गेम का आइडिया सोचने लगते हैं।
उनके बीच का जो वो रोमांटिक सवाल है वो कभी हल नहीं होता और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है, है ना?
बिल्कुल, ये साफ हो जाता है कि उनका रिश्ता किसी रोमांटिक लेबल से कहीं बड़ा है। उनका प्लेटोनिक और क्रिएटिव प्यार ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है।
और ये उपन्यास के टाइटल टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो के फलसफे को सही साबित करता है।
जैसा कि मार्क्स ने एक बार कहा था, खेल क्या है, ये अनंत पुनर्जन्म, अनंत बार माफी पाने की संभावना है।
कोई भी हार हमेशा के लिए नहीं होती,
क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना आए, हमेशा एक और कल, एक और मौका होता है, हमेशा एक नया खेल शुरू करने की,
कहानी को रीस्टार्ट करने की गुंजाइश होती है।
ये कहानी प्रेम कहानी की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देती है। ये मानती है कि जिसके साथ आप कुछ बनाते हैं वो रिश्ता आपके जीवन का सबसे गहरा और स्थायी बंधन हो सकता है।
और ये हमें सिखाती है कि जीवन में भारी नुकसान और असफलताओं के बावजूद ठीक एक वीडियो गेम की तरह फिर से शुरू करने और कुछ नया, कुछ सुंदर बनाने का अवसर हमेशा होता है। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।